नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गई हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित पाँच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने इस पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।